हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 33। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु अकारंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बरधारुणा बिम्बफलधरोष्ठा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दीप्तिस्तवे, वेदे साङ्गपत् कमोपनिषदि खायन्ति यं सामग ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा, देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवतसेवया, भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकीं, पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम्, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा। ಶ್ರೀಯದ್ವೈತ ಕಥಾಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಕೀ ಜಯ ಹೋ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂಚಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಜಿಸ್ಕಾ ಶೀರ್ಷಕ ಹೇ ನಾರದ ದ್ವಾರ ವ್ಯಾಸದೇವ ಕೋ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಾ ಉಪದೇಶ ದೇನ ಶ್ರೀಮದ್ ನಾರದ ಮುನಿ ಜೀ ಕೆ ಮುಖಾರಿಂದ ಸೆ ನಿಕಲೇ ಹುಯೇ ಇನ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೀ ಪವಿತ್ರ ಶಬ್ದೋ ಕೋ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರ್ತೆ ಹೈ ವೇ ಕೇತೆ ಹೈ ಆಮಯೋಪಶ್ಯಭೂತಾನಾಂ ಜಾಯತೆ ಯೇನ ಸುಪ್ರಿತಾ ತದೇವ ಯಾಮಯಂ ದ್ರವ್ಯಂ ನ ಪುನಾತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಿತಂ ಆಮಯೋಪಯಶ್ಯಭೂತಾನಾಂ ಜಾಯತೆ ಯೇನ ಸುಪ್ರತಾ ತದೇವ ಯಾಮಯಂ ದ್ರವ್ಯಂ ನ ಪುನಾತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಿತಂ ಆಮಯೋ ಯಶ ಭೂತಾನಾಂ ಜಾಯತೆ ಯೇನ ಸುವ್ರತಾ ತದೇವಂ ಯಾಮಯಂ ದ್ರವ್ಯಂ ನ ಪುನಾತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಿತಂ ಆಮಯೋ ಯಶ ಭೂತಾನಾಂ ಜಾಯತೆ ಯೇನ ಸುವ್ರತಾ ತದೇವಂ ಯಾಮಯಂ ದ್ರವ್ಯಂ ನ ಪುನಾತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಿತಂ ಆಮಯೋ ಯಶ್ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಜಾಯತೆ ಯೇನ ಸುವ್ರತಾ ತದೇವಂ ಯಾಮಯಂ ದ್ರವ್ಯಂ ನ ಪುನಾತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಿತಂ ಆಮಯೋ ಯಶ್ಚ ಭೂತಾನಾಂ ಜಾಯತೆ ಯೇನ ಸುವ್ರತಾ ತದೇವಂ ಯಾಮಯಂ ದ್ರವ್ಯಂ ನ ಪುನಾತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಿತಂ ಶಬ್ದೋ ಕಾತ್ ಆಮಯ ಅರ್ಥಾತ್ ವ್ಯಾಧಿಯಾಂ ಯಚ ಜೋ ಭೀ ಭೂತಾನಾಂ ಜೀವೋ ಕಿ ಜಾಯತೆ ಸಂಭವ ಹೋತಿ ಹೈ ಯೇನ ಜಿಸ್ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಸುವ್ರತ ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ ತತ್ ವಹ ಏವ ಹಿ ನಿಶ್ಚಯ ಹಿ ಆಮಯಂ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಧಿ ದ್ರವ್ಯಂ ಯಾನಿ ವಸ್ತು ನಹಿ ಪುನಾತಿ ಯಾನಿ ಇಚ್ಛಾ ಕರ್ತಿ ಹೈ ಚಿಕಿತ್ಸಿತ ಉಪಚಾರ ಕಿ ಕೈ ಅನುವಾದ हे श्रेष्ठ पुरुष क्या वैशेष विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे वह रोग उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ कभी कभी दूध की बनी हुई वस्तुएं खाने से आमाशय गड़बड़ा जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती हैं, तो वह उस गड़बड़ी को दूर कर देता है। उसी प्रकार भौतिक जगत के ताप तापत्रीय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्य को उसी तरह से आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में लाल कर लिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। इस प्रकार किसी वस्तु की भौतिक धारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें ना तो प्रकृति पर प्रभाव जताने का प्रयास करना चाहिए, ना ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। प्रत्येक वस्तु भगवान की प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में परिणत कर सकते हैं। अतः भगवान की परम इच्छा से कोई भी तथा कथित भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। अपने भौतिक रोग का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए जहाँ न दुख है, न शोक, न भय है, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि परम ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म, यह वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। ओकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। पहला स्कंद, पांचवा अध्याय। नारद द्वारा वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवतम का उपदेश। आज हम श्लोक नंबर 33 पढ़ रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट वर्स। एक्चुअली दिस इज द एसेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो है वो इसी आधार पर टिकी हुई है। क्या है? आमयो यश्च भूतानां। आमय कहते हैं बीमारियों को, जो दुख होते, जो कष्ट शरीर में उत्पन्न होते ना। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर नारद मुनि कह रहे हैं, आमयो यश्च भूतानां, इन जीवों के अंदर जो भी बीमारियां आती हैं, कष्ट जो किसी किसी व्यक्ति को उत्पन्न होते हैं, तो तदेवं ह्यामयं द्रव्यम, उसी जिस वस्तु के कारण वो कष्ट उत्पन्न हुआ है वही वस्तु न बुनाती चिकित्सितम। अगर कोई अच्छा चिकित्सक होता, जैसे फिजिशियन अगर अच्छा होगा, तो फिर उसी वस्तु से वो एक ऐसी वस्तु बनाकर उसका इलाज बताएगा, उसी मर्ज का, यानी कि जिस वस्तु से उसको यह बीमारी हुई है उसी वस्तु से उसका इलाज भी बताएंगे, अगर कुशल चिकित्सक होंगे तो। यहाँ बताया पुनाति चिकित्सितम, जैसे कि हम लोगों ने श्लोक नंबर 32 में पढ़ा, एतत् संसूषितं ब्रह्मतापत्रय चिकित्सितम, कि इस संसार में जितने भी जीव को जोन से भी रोग तापत्रय प्राप्त हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि जीव क्या करता है, ये जो भौतिक वस्तु है, जो भी कार्य करता है, अपने इंद्रियों को या अपनी कोई भी सुविधा को यूज कर रहा है, किसके लिए, इंद्रिय को तृप्त करने के लिए। तो वो किसका कारण बनते हैं, वही जो वस्तु है वो हमारे दुख का कारण बनते हैं। जैसे भगवान ने बताया यही संस्पर्श जाभूगा दुख योनय एवते, कि इस संसार में जो भी वस्तु है अगर आप उसको अपने इंद्र तृप्ति के लिए यूज करोगे तो वो आपके दुखों का कारण बनेंगी। अब वास्तव यहाँ पर वस्तुओं को यूज करने का मना ऐसे है कि अगर आप उसको इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करोगे तो दुखों का कारण बनेगा। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि 3.9 में भगवान ने बहुत ही सुंदर बताया, यज्ञार्थात कर्मणो न्यंत्र लोकोयम कर्म बंधन, कि अगर आप कोई भी कार्य करते हो संसार में, कोई भी काम करते हो, अगर वो यज्ञार्थात नहीं करो, यानी एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हो, तो भले आप कोई भी कार्य कर रहे हो, खाना खा रहे हो, घर की देखभाल कर रहे हो, संतान की देखभाल कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लोकोयम कर्म बंधन, तो ये कर्म जो है वो सदैव हमारे बंधन का कारण बनते हैं अगर हम उसको अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं। तो मॉडर्न सोसाइटी में हमारी उन्नति की कसौटी क्या है कि आप किस कदर ज्यादा से ज्यादा इंद्र तृप्ति की सामग्री को एकत्रित कर सकते हो। जैसे हमने सार्वक मुनि की विषय मिसाल के बारे में पढ़ा, ऋणम कृत्वा धृतम पिबत, आपको आनंद लेना है, आपने ये जीवन लिया है आनंद प्राप्त करने, धन नहीं है तो क्या करो, ऋणम कृत्वा, आप धन नहीं है उधार ले लो, चोरी करो, डाका डालो, मगर आनंद तो जीवन का लक्ष्य है तो आपको आनंद, तो यही लक्ष्य को केंद्र बनाकर जीव कार्य करता है। परंतु होता क्या है, जितना ज्यादा भोग प्राप्त करता है भौतिक वस्तुओं से इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास करता है, उतना ही उसे अपराध लगता है, और जितना ही उसे अपराध लग रहा है, क्योंकि अपराध क्यों लग रहा है, क्योंकि उसने किस लिए कार्य किया, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं किया बल्कि किस लिए किया, इंद्र तृप्ति के लिए, तो उसको क्या लगेगा। भगवान कहते हैं भुंजते थे तो अगम पापा में ये पचनते आत्म कारण, 3.13 में भगवान ने कहा अगर तुम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करोगे तो फिर क्या होगा, आपको अपराध आपको लगेगा, और अपराध लगेगा उतने ही आपको दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि दुख अपराध के रिजल्ट में क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा ना। परंतु यदि उन्हीं वस्तुओं को हम भगवान की भक्ति के लिए यूज करते हैं तो आनंद प्राप्त होता है। तो कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में कार्य त्यागने के लिए कभी नहीं कहा, कृष्ण से डू डेथ बट डू डेथ फॉर मी, जो भी कार्य है वो कार्य आप करो, लेकिन वो कार्य किसके लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए। तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं, तदेवम ह्यामयम धर्मम न पुनादि चिकित्सितम, यदि वही कार्य उपचार से अगर फिजिशियन की डायरेक्शन के अनुसार उसी चीज को हम यूज करेंगे तो फिर वो हमारे रोग को समाप्त करेगा। तो यदि कोई कार्य करता है और कार्य दूसरे तरीके से करता है तो उससे बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट निकलता है। भौतिक संसार में हम देखते हैं, जैसे एक व्यक्ति दूध से बनी हुई कोई वस्तु खाता है, जैसे खीर, रबड़ी, रसगुल्ला, इससे उसको क्या हो जाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है उसका, है ना, बदहजमी हो जाती है। फिर उसी दूध से बनी हुई एक अन्य वस्तु जिसका नाम है दही, उसको यदि यूज करते हैं तो उसका डाइजेशन सिस्टम परफेक्ट हो जाता है। उसी तरह से मर्क्यूरी जिसे कहा जाता है कि पॉइजनस है, परंतु यदि यही वाली मर्क्यूरी दवाइयों में भी इस्तेमाल होती है और इससे हमारे रोग खत्म होते हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि ये हनी जैसे शहद है उसको अगर पानी में मिलाकर यूज किया जाता है, गर्म पानी में अगर उसको मिलाकर यूज करें तो उससे वेट लूज होता है, परंतु यदि वही हनी को दूध में मिलाकर यूज किया जाता है तो उससे वेट इंक्रीज होता है। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी वस्तु को किस प्रकार से अप्लाई करें। आप कोई भी वस्तु को अगर अप्लाई करने का तरीका अलग होगा तो उसका रिजल्ट भी बिल्कुल अलग होगा। उसी प्रकार कर्म बंधन, कृष्ण कॉन्शियसनेस में अगर हम कार्य करते हैं तो वही कार्य जो है वो हमारे छुटकारे का, हमारे मोक्ष का कारण बनते हैं, लेकिन यदि वही कार्य इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं तो वो हमारे बंधन का कारण बनते हैं। कृष्ण की हमारे ऊपर असीम कृपा है, करुणा है। कृष्ण अलग अलग तरीके से बताते हैं कि चलो जिस प्रकार से भी आप मेरी ओर आना चाहते हो तो आओ मेरी ओर, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति नमुषना आतो जिज्ञासु राजधारी ज्ञानी च भरत ऋषभ। 7.16 में भगवान ने कहा चार प्रकार के मेरे पास लोग आते हैं, वो आर्थार्थी, ज्ञानी और आतो और जिज्ञासु। तो भगवान ने किसी को मना, लेकिन शुरू में क्या होता है, किसी भी भाव से यदि हम भगवान के पास आते हैं तो भगवान हमें स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा करते करते फिर क्या होता है, हृदय पवित्र हो जाता है। भगवान की सेवा में यदि हम आ जाते हैं तो किसी भी भाव से भगवान की शरण में आए हैं तो आगे क्या होगा, आस्ते आस्ते हृदय परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन भगवान जो है उन्होंने हमें फ्री विल का पावर दिया है और भगवान स्वयं हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है, आपकी इच्छा है अगर धन प्राप्त करने की या निरोगी शरीर प्राप्त करने की या कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करने की, तो भगवान हमें हमारी उस इच्छा को आदर देते हैं। जैसे ध्रुव भगत ध्रुव भगवान के पास गए थे, किस लिए भगवान के पास गए थे, राज्य प्राप्त करने के लिए, पिता से ज्यादा अधिक राज्य उसको प्राप्त करना था। हालांकि जब भगवान आ गए थे तो ध्रुव ने बोला कि नहीं भगवान, मुझे मैं कितना बेवकूफ था कि हीरे को छोड़कर कांच को लेने के लिए आपके पास आया था, मुझे अब ये नहीं चाहिए। लेकिन भगवान जानते थे कि उनके हृदय में ये इच्छा है, तो भगवान सब कुछ दे देते हैं, वो भी दे दिया जो उसे चाहिए था और वो भी दे दिया जो उसके कल्याण के लिए है। तो भगवान जो है वो आपकी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं, परंतु ये साधक का कर्तव्य है कि यदि हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं भी तो आहिस्ता आहिस्ता अपने मन को भौतिक वस्तुओं से हटाकर भगवान की भक्ति में लगाए, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है। अपने जीवन के अंत समय में श्री प्रभुपाद ने आखिरी प्रवचन दिया, तब अक्टूबर 21, 1977 में अपने शरीर को त्यागने से 3 हफ्ते पहले श्री प्रभुपाद जी उनकी आंखें बंद हो रही थी, उनका शरीर बहुत ही वीक एंड थिन, बहुत कमजोर हो गए थे और उस समय उनकी आंखें नहीं खुल रही थी, लेकिन फिर भी अत्यंत ही सुंदर वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ति प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। 13.22 अत्यंत ही सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि जीव भौतिक प्रकृति को भोगने की इच्छा करता है तो आत्मा इस शरीर से संबंधित होकर गुणों में बाध्य हो जाती है और इसकी कारण सदसद योनि जन्मसु, जन्म मरण, मृत्यु जन्म और मरण का चक्कर जो है वो चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा है, वो भौतिक प्रकृति को भोगने की इच्छा करता है। श्री प्रभुपाद ने कहा कि इस मॉडर्न सोसाइटी में रजोगुण और तमोगुण बहुत अधिक है, है ना? रजोगुण से लोभ और रजोगुण से काम, हाँ, और तमोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। तो यदि कोई व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में ही रहता है तो फिर क्या होगा, उसके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि उससे क्या होगा, वो ऊपर उठ नहीं पाएगा। तो रजोगुण में जीव सदैव क्या करता है, प्लानिंग करता रहता है कि कैसे अधिक से अधिक और भी भौतिक वस्तुएं प्राप्त करें। तो यदि कर्म योग खाली करता रहेगा ना तो उसके दुख का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि वो भले रजोगुण में बहुत बहुत कार्य करता है, प्लानिंग करता है, बहुत बहुत वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन वही वस्तुएं उनके दुख का कारण बनती है। यही संस्पर्श जाभो का दुख योनय एवत। वास्तविक भक्ति तो श्रवण और कीर्तन है, परंतु यदि हम श्रवण और कीर्तन भी रजोगुण में रहकर करेंगे तो उससे अधिक लाभ नहीं होगा। तो उसके लिए क्या, अगर सत्वगुण में रहकर हम वो कार्य करने का प्रयास करेंगे तो फिर उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसलिए हमें अपने जीवन को सात्विक बनाना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अपने जीवन को सात्विक बनाना है। कैसे? अब भौतिक वस्तुएं को हम छोड़ नहीं सकते, जैसे पहला है खाना पीना, उसको छोड़ तो नहीं सकते ना। उसको सात्विक कैसे बनाएंगे? उसको पहले भगवान को अर्पण करेंगे और फिर वह प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो सात्विक आहार मिल गया। और उसके बाद संग को त्याग नहीं सकते, लेकिन जो भौतिक एसोसिएशन है, जो के ना भौतिक बातें बातें करते हैं, ऐसे जो जनसंघर्ष, उन सबको अगर हम परित्याग करेंगे और साधु संघ करेंगे, भक्तों का संघ करेंगे, तो फिर वो एसोसिएशन हमें उन्नति करने में हमारी सहायता करेगी। अब कुछ लोग को पढ़ने का शौक होता है, तो ठीक है, वो शास्त्र भौतिक शास्त्र पढ़ने से उसको और भी भौतिक वस्तुओं में आकर्षण पैदा होगा, लेकिन यदि हम भागवत और भगवद गीता जैसे शास्त्रों को अध्ययन करेंगे, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर और दूसरे जितने भी ये चीजें है ना पढ़ने की लिटरेचर, उससे क्या होगा, हमारी बुद्धि और भी भौतिक वस्तुओं में आकर्षित हो जाएगी। लेकिन अगर हम भगवान के वचनों का अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हमारी बुद्धि भी सात्विक उस स्टेज पर आ जाएगी। और देश, जैसे हमने पढ़ा कि अभी जैसे कल हम श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहेंगे कि आपको एक अच्छी जगह पर इसका चयन करना चाहिए, इस जगह पर नहीं रहना चाहिए जहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कामी हों, बहुत ज्यादा भौतिक इंद्रियों के लिए कार्य करते हों। तो जैसे यात्रा करनी चाहिए ऋषिकेश, हरिद्वार, ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहाँ से आपका हृदय सात्विक वाइब्रेशन को इकट्ठा करता है। और काल, समय को, समय देखो, अब हर व्यक्ति के पास समय होता है, लेकिन समय को किस टाइम पर हमें इम्पोर्टेंट देनी है कि वो देखो, समय क्या होता है, सुबह को 3 बजे से लेकर 11 बजे तक सात्विक समय होता है। अब 11 बजे से लेकर 7 बजे तक रजोगुणी होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सब लोग अपने भौतिक इंद्रियों के लिए कार्य करते हैं, कार्य करने वो ये करो वो करो ये सब। और शाम को 7 बजे से लेकर जब संध्या आरती हो जाती है, उसके बाद रात को 3 बजे तक तमोगुणी समय होता है। तो हमें जो सात्विक समय है, अर्थात 3 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक अपना सारा भक्ति का कार्यक्रम करना है, ये जो समय होता है, स्पेशली जो अमृत वेला जिसको बोलते हैं, 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, जब तक सूर्य उदय नहीं होता है, वो समय सोने का नहीं होता है। वो समय को हमें यूज करना है भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए। ऑटोमेटिकली मन लगता है, हमें कोशिश भले बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि अब आजकल मॉडर्न लाइफ इतनी हार्ड हो गई कि रात को सोते सोते भी लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें ना कोशिश करनी चाहिए कि घर में वातावरण ऐसा बनाए कि जल्द से जल्द अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सवेरे उठेंगे तो फिर हम सात्विक समय का भोग करेंगे। जिस सात्विक समय में केवल भगवान की भक्ति होती है, तो फिर इससे क्या होगा, पूरा दिन हमारा अच्छा जाएगा। जैसे कि हमने पहले श्लोक में पढ़ा 32 में, एतत् संसूषितं ब्रह्मस् तापत्रय चिकित्सितं, कि जो 3 ताप हैं संसार के, जो दुख हैं, उनसे बचने का, उनसे मुक्त होने का केवल एक ही तरीका है, क्या, यदि ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणी भावती, तो यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो फिर उसी से ही हम अपने दुखों का निवारण कर। श्री प्रभुपाद जी यहाँ तक कहते हैं कि कृष्ण से संबंध जोड़े बगैर संसार में खुश होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इस संसार में हर कोई संबंध स्थापित करना चाहता है ना, जो लड़के हैं वो लड़कियों से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति चाहता है एसोसिएशन, है ना। इसीलिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह पर हर कोई एक दूसरे को जानना चाहता है, एक दूसरे से मिलना चाहता है, एक दूसरे से, और इस संबंध से वो खुश होना चाहते हैं, क्योंकि वो इन व्यक्तियों की या उनकी ऐश्वर्य को भोग कर संतुष्ट हो, यानी कि अगर किसी से संतुष्टि होती है, एक लड़का है एक लड़की से दोस्ती करता है, फिर उससे मिलना चाहता है, उसको भोग करना चाहता है। बिजनेसमैन क्या करता है, वो किसी और बिजनेसमैन से संबंध स्थापित करता है, तो फिर उसके वास्तव में ये संसार में जो कुछ भी है वो भगवान श्री कृष्ण का है, और वही वस्तु जो भगवान की है, जीव क्या करता है उसको अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए यूज करना चाहता है। तो फिर उस वही उसकी इच्छा उसकी दुखों का कारण बनते, कारण गुण संगस्य सदसन। ये भी क्या होता है कि वही वस्तु उसके दुख का कारण क्यों बनती है, क्योंकि वो भगवान की है और उसने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको यूज किया। जैसे एक व्यक्ति गरीब होता है तो वो दुखी होता है, ठीक है, वो तो दुखी हो रहा है, लेकिन अब अच्छे कार्य करके वो अमीर बनता है तो फिर वो क्या करता है, अमीर लोग क्या करेंगे, गलत कार्य करेंगे, है ना। जिसके पास धन ज्यादा होगा वो नशा करेंगे, दूसरे और भी गलत कार्य करेंगे और अगले जन्म में उसको दुख भोगना पड़ेगा, फिर वो गरीब बन जाएगा। फिर गरीब व्यक्ति गलत कार्य कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास धन नहीं होता ज्यादा, तो फिर वो क्या करता, कैसे भी करके भगवान की भक्ति करेगा या फिर ऐसा मतलब कोई देवी देवताओं की पूजा, फिर वो इस तरह से वो वापस अमीर बनेगा और अमीर बन के गलत कार्य, यानी कि क्योंकि केंद्र नहीं बना ना कृष्ण को। आप अमीर हो या गरीब हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने जीवन को किसकी प्रसन्नता के लिए यूज कर रहे हो इससे फर्क पड़ता है। जैसे अगर कोई सुंदर नहीं है, बदसूरत है, तो उसके लिए बहुत बड़ा दुख है, फिर वो क्या करता है, सदैव प्रयत्न करता है कि मैं किस तरह से सुंदर बनूं, तो फिर वो अच्छे कार्य करेगा या फिर कुछ भी करेगा सुंदर बनने के लिए, और फिर अगले जन्म में अच्छे कर्मों के कारण, क्योंकि बुरा व्यक्ति है मतलब इतना ज्यादा उसके अंदर फेस में वो नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, तो वो इतने ज्यादा गलत कार्य नहीं कर सकता, लेकिन फिर अगले जन्म में उसको सुंदरता प्राप्त हो जाएगी, फिर जो सुंदर है वो ऐसे कार्य करेंगे कि वो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, है ना। लड़कियां होंगी अपने आपकी नुमाइश करेंगी, अपने शरीर को दिखाएंगी, और जो लड़के होंगे वो भी क्या करेंगे, वो लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और इस तरह से वो गलत कार्य करेंगे और उनका रियल जो जीवन का उद्देश्य है वो भूल जाएंगे और अपने आप को क्या समझेंगे कि मुझे इसी सुंदरता से भोग करना है। उसी तरह से यदि कोई बुद्धू है जिसके पास अक्कल नहीं है, वो दुखी होगा, और फिर है ना दुखी होगा लेकिन वो कार्य ऐसा कर नहीं सकेगा क्योंकि उसके पास अक्कल नहीं है। लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा अक्कल जिसके पास आ गई, तो वो क्या करेंगे, आज इंटेलिजेंट लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हैं जिससे समस्त लोगों को दुखी करते हैं, और फिर अगले जन्म में वो फिर दुखी क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसके कारण वो सफरिंग। इस तरह से वास्तविकता क्या है कि जब तक आप अपने कार्य को, चाहे आप अक्लमंद हो, चाहे आप बुद्धू हो, चाहे आप सुंदर हो, चाहे आप क्रूप हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, यदि आप अपने किसी कार्य में कृष्ण को सेंटर में नहीं रखते हो, तो फिर आप अगर उन्नति भी कर रहे हो अपने क्षेत्र में, यदि उन्नति भी कर रहे हो तो भी वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट, कृष्ण कॉन्शियसनेस के बगैर उन्नति और भी अधिक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। जैसे गरीब बेचारा क्या अपराध कर सकता है, परंतु अगर अमीर है तो वो इतने अपराध कर सकता है कि न जाने कितने जन्मों तक उसे अपने इन अपराधों को भोगना पड़े। इस संसार में हम जितने भी भौतिक कार्य करेंगे वो भले उसमें अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपराध का कारण बनेंगे। अगर हम खाएंगे अपनी इंद्रिय तृप्ति, तो सबसे बड़ा अपराध वही है कि हम अपने जीवन में जिसकी वस्तु है उसको नहीं लौटा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस चीज से एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करती हूँ। एक व्यक्ति था, छोटा मतलब यंग बॉय था, उसके पिता की मृत्यु हो रही थी। तो मृत्यु के समय उसने अपने बेटे को बताया कि देखो बेटा, मैंने अभी आप लोगों के परवरिश के लिए, यानी कि अपने सुख को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति से कुछ धन उधार लिया है, तो मैं तो वो लौटा नहीं सका, आप कृपया उसको ये धन लौटा दीजिएगा पैसे कमा कर, वरना तो हम मतलब मैंने जो प्रण लिया था कि मैं वापस आपको लौटाऊंगा तो वो नहीं कर पाया हूँ, तो आप है ना उसको लौटाना वापस से। तो फिर उसने बेटे ने अपने पिता को वचन दिया कि हाँ पिताजी, जिसका धन हमने भोगा है मैं जरूर उसको वापस से करूंगा। तो फिर उस बेटे ने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करने के बाद उसने धन एकत्र किया और वो उस धनी सेठ के पास गया। बेटा बोला कि आप मेरे पिताजी ने आपसे उधार में ये धन लिया था तो मैं आपको वापस करने आया हूँ। तो वो बोला नहीं बाबा, मैं मुझे तो याद नहीं है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे कुछ लिया था। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पिता ने मृत्यु के समय मुझे बोला था कि आपने आपसे धन लिया है। तो बोला ठीक है, मैं अपना ना कॉपी चेक करता हूँ, अगर मेरे उसमें लिखा होगा कैश मेमो में तो पता चल जाएगा ना कि जो वो थी ना बही खाते वगैरह बनाते। तो उसने बोला तो उसमें ढूंढा वो कब लिया था, वो समय वगैरह वो ढूंढा, पूरी कॉपी में ढूंढा, लेकिन कहीं पर भी उसने धन का लिखा हुआ नहीं था। तब उसने बोला कि नहीं, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है तो मैं कैसे ले सकता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति जो उसका बेटा था उसने कहा कि नहीं, अगर आप मुझसे लोगे नहीं तो फिर मुझे अगले जन्म में 4 गुना करके इसको लौटाना पड़ेगा। दिस इज नेचर्स लॉ, है ना, ये तो कुदरत का कानून है कि आपने अगर किसी का भोगा है तो वो आप कुदरत दूसरे जन्म में आपसे ले लेगी। ऐसा नहीं है कि आप छूट गए, हम लोग क्या सोचते हैं छूट गए, चलो इसने इसको याद ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कोई एक रत्ती भी किसी की नहीं ले सकता, किसी के नसीब का अगर आपने लिया है तो वो आपको लौटाना है, इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में। और यदि इसी बात को हम और भी अच्छे तरीके से देखें तो इस संसार में सब कुछ जो कुछ भी है वो सब किसका है, कृष्ण का है। भगवान बताते हैं कि यज्ञात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अगर इस संसार में कोई भी कार्य तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करोगे तो फिर दोबारा तुम्हें संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि कोई वस्तु तुम्हारी नहीं है, सब कुछ मेरा है। इसलिए यज्ञ शिष्टाचिन संतो मुच्यंते कर्म के विषम। अगर कोई कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो वो समस्त कर्मों के अपराधों से मुक्त हो जाता है। भुंजते ते त्वं पापा ये पचन्त्यात्म कारण। अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं, जीव अपने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है तो भुंजते ते त्वं पापा वो अपराधी हो जाता है और अपराधी व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर बहुत ही सुंदर है ना बताया श्री नारद मुनि ने कि श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि दूध से प्रॉब्लम हो जाती है अगर किसी को, तो वही दूध से यदि दही बनाई जाती है तो ये सीक्रेट सॉल्यूशन है जो कि चिकित्सा, जो वाकई में चिकित्सित का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो फिजिशियन जैसे होता है उसके अगर आदेश अनुसार आप उसी वस्तु को भी यूज करोगे तो फिर वो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। जैसे हमारे भौतिक कार्यों से अपराध होता है और अपराध के कारण हमें दुख भोगना पड़ता है, लेकिन वही कार्य अगर भगवान की सेवा के लिए यूज करेंगे तो उससे अपराध नहीं लगेगा बल्कि आनंद प्राप्त होगा। अब उसी तरह से इसे हम देखें कि ये जो मंदिर होते हैं ना हमारे टेम्पल, वो किससे बनते हैं, सीमेंट रेत कंकर और इसी सारी चीजों से बनते हैं, लेकिन वही मंदिर है उसमें आकर अगर आप कार्य कर रहे हो, मंदिर में कोई कार्य कर रहा है तो वो आपके पुण्य अर्जित कर रहे हो, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। अगर मंदिर में आकर आप डांस करते हो ना, मंदिर में आकर भगवान का कीर्तन चल रहा है और उसमें आप डांस करते हो तो इससे क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो वही डांस आपको भगवत प्राप्ति कराएगा। लेकिन वही वस्तुओं से जैसे ये टाइल्स हैं, कंकर हैं, सीमेंट है, कॉन्क्रीट, इन सारी चीजों से मिलकर ही बना हुआ है नाइट क्लब, और वहां पर जाकर यदि आप डांस करते हो तो कर्म बंधन में फंसोगे और पशु योनि को प्राप्त करना पड़ेगा। तो हुआ क्या, चिकित्सितम, यानी कि उस चिकित्सितम का क्या मतलब है, properly treated under the directions of physician. And who is the physician? Physician is guru. जैसे गुरु के आदेश अनुसार यदि हम अपने सारे कार्य कर रहे हैं तो वो चिकित्सितम एकदम हमारे कार्य प्योर हो जाते हैं, प्योरिफिकेशन हो जाती है उसमें। दिस चेंजिंग प्रोसेस इज कॉल्ड भक्ति। मतलब यदि हम हर कार्य भक्ति के भाव से करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे कर्म बंधन का कारण नहीं बनता, बल्कि वो हमें कर्म बंधन से छुटकारे का कारण बनते हैं। जैसे जो मायावादी लोग होते हैं वो त्याग करते हैं, बोलते हैं स्टॉप डांस, डांस नहीं करना चाहिए हम लोगों को, उससे क्या होगा, हमारी नाश हो जाएगा, यानी हमारी उन्नति जो सेल्फ रियलाइजेशन में है उसका नाश हो जाएगा। लेकिन भक्त क्या कहता है, आप डांस करते हो, आप खाते हो, डांस प्रिंट ईट रहना सिक्योर मनी, सब किसके लिए करना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर आप नाचते हो तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, खाते हो तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अगर आप शास्त्र पढ़ रहे हो तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अगर आप धन अर्जित कर रहे हो या धन को सिक्योर कर रहे हो तो किसके लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कहा तो सिंपली हैव टू चेंज द इंटरेस्ट, रियल इंटरेस्ट इज हाउ टू सेटिस्फाई कृष्ण। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस। हम कोई भी कार्य करें केवल ये सोचकर कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, तो इससे वो कर्म आपके कर्म बंधन का कारण नहीं बनेंगे, बल्कि वही कर्म आपकी मोक्ष का कारण बनेंगे। परंतु लोग ये नहीं समझते, जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो मायावादी लोग कहते हैं जैसे वाय कृष्ण, है ना, वाई नॉट मी, कृष्ण क्यों इंजॉय बने, क्यों मैं नहीं इंजॉय बनूं। तो फिर वही सोच, सिर्फ कार्य अलग नहीं होगा, सोच जो है वो आपके ना कर्म बंधन का कारण बनेगी, हमारी संतुष्टि। और दूसरा ये कि वो भले कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, वो भौतिक कार्यों से कभी संतुष्ट हो भी नहीं सकते। अगर कोई जीव चाहता है कि मैं भौतिक कार्यों के करके अपने आप को संतुष्ट करूं तो संभव भी नहीं है। जिस तरह से अगर हमारी, जैसे हम सब भगवान के अंश है ना, अगर हमारी इंद्रियां ये चाहें कि हम क्यों पेट को भोजन खिलाएं, मेहनत, हाथ सोचे मेहनत करूं मैं, पांव सोचे इतने इतना ज्यादा वॉक करके सामान लेकर आऊं मैं, और है ना दूसरे सारे हमारे शरीर के अंग ये सोचे कि सारी मेहनत हमारी और सारा का सारा खा जाता पेट, नहीं आज से मैं खुद से एंजॉय करूंगा और खुद से खाऊंगा, तो फिर क्या वो संतुष्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसकी संतुष्टि का आधार है पेट। उसी तरह से जीव जो कि आत्मा है वो भगवान का अंश है, और भगवान जो है आधार है जीव की संतुष्टि का। भगवान ऋषिकेश है, और जीव को यदि संतुष्ट होना है तो भगवान की सेवा करके इनडायरेक्टली वो संतुष्ट, जिस तरह से पेट में जब खाना जाता है तो पूरी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं, किसी को कोई भी ये नहीं होता है, दुख नहीं रहता है कि आज मुझे खाना नहीं मिला। उसी तरह से यदि जीव भगवान की सेवा करता है, भगवान को संतुष्ट करता है, तभी जीव संतुष्ट हो सकता है, क्योंकि फिर उसने सही तरीके से खुद को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। तो वही कार्य जो कि आपके बंधन का कारण बनते हैं, वही कार्य यदि हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो वो मोक्ष का कारण बनते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। हरि बोल।